हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। विहा और वेदांत वापस गाड़ी में बैठकर निमानी हाउस के लिए निकल गए। वेदांत ने गाड़ी में बैठते ही कहा, अब मुझे ये सब बनाना भी सीखना पड़ेगा। मैं रोज रोज तुम्हें ऐसे अनहाइजेनिक खाना नहीं मिला सकता हूँ। ये सब कुछ तुम्हारे लिए भी हार्मफुल है और बच्चे के लिए भी। हमें बहुत ज्यादा सावधानी से सारे काम करने होंगे। और तुम हो कि समझने का नाम नहीं ले रही हो, अब तुम बच्चे नहीं हो टोमेटो, तुम्हारे अंदर भी एक बच्चा है। विहा ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, लेकिन वो बच्चा आपने मुझे दिया है ना, सारी गलती आपकी है। तो खाना बनाना सिर्फ आप सीखेंगे, मैं नहीं। मैं तो ऐसे ही खुश हूँ और मुझे उस अनहाइजेनिक खाने में कोई दिक्कत भी नहीं नजर आती है। फूड वाले कल कितनी साफ सफाई से तो बना रहे थे, अब आप लोगों को अनहाइजेनिक लगता है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। वेदांत विहा से बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं था, इसलिए उसने शांत होते हुए अपने मन में सोचा, मेरी शादी नादान सी बच्ची से हो गई है तो अब मुझे खाना बनाना भी सीखना ही होगा। और मैं ज़रूर बहुत जल्दी सब कुछ बनाना सीख जाऊंगा। और इसके बाद सारा खाना तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ का बना खाओगी। कहीं ना कहीं ये सोचकर वेदांत को खुशी भी हो रही थी और नई चीज़ सीखने की एक्साइटमेंट भी। थोड़ी देर की ड्राइविंग के बाद ही वे निमानी हाउस पहुँच चुके थे। वहाँ पहुँचने के बाद वेदांत ने अपना फ़ोन निकाल कर देखा तो पता चला कि उसे अनाही के कितने सारे मिस कॉल आए थे। उन्हें देखकर उसकी आंखें फैल गईं। उसने अपना सर पकड़ते हुए कहा, अब इसका कॉल नहीं उठाया तो ये अलग से चिल्लाएगी। ये दोनों बहनें पता नहीं चिल्लाने का कोर्स कहाँ से करके आई हैं। वेदांत ने फिर जल्दी से अनाही को कॉल बैक किया। उधर अनाही फिलहाल रूहान के साथ कपल डांस कर रही थी। वहाँ एक छोटा सा स्पीकर था जिसमें दिल दिया गल्ला सॉन्ग बज रहा था। सब कुछ बेहद खूबसूरत लग रहा था, जैसे वहाँ कोई कमी ना बची हो, एकदम परफेक्ट। अनाही और रूहान दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और उनका ध्यान उस फोन कॉल की रिंग से टूटा और रूहान के चेहरे पर तुरंत ही झुंझलाहट आ गई। उसने टेबल पर रखे अनाही के पर्स की तरफ देखा जिसमें रखा उसका फोन बार बार बज रहा था। अनाही ने जल्दी से रूहान का हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहा, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कौन है, हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो। रूहान का मन कर रहा था फ़ोन करने वाले को उसके घर जाकर जान से मार डाले। उसका इतना अच्छा मोमेंट उसने ख़राब कर दिया था। अब तो उसे भी जानना था आखिर कौन था वो शख्स जिसकी वजह से उसकी मैडम जी उससे दूर हो गई हैं। अनाही ने जैसे ही फ़ोन पर फ्लैश होते नाम को देखा, उसने आंखें छोटी करते हुए कहा, इस वक्त वेदांत जी क्यों कॉल कर रहे हैं? अनाही ने जैसे ही फ़ोन उठाया, वेदांत ने जल्दी से कहा, आई एम रियली सॉरी, मुझ पर गुस्सा मत करना, मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं देख पाया। एक्चुअली इसको कॉलेज में था ना, तो तुम्हें पता है मैं उस वक्त सिर्फ तुम्हारी बहन को संभाल सकता हूँ, कॉल्स को नहीं। वेदांत जहाँ अनाही के गुस्से से डर रहा था, वहीं अनाही तो भूल ही चुकी थी कि उसने वेदांत को कॉल किया था। उसे याद आया कि उसने जूली को कॉल करने के बाद वेदांत को कॉल किया था। फिर उसने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं, मैं आप पर गुस्सा नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली मैं आज ऑफिस नहीं गई थी, बस यही इन्फॉर्म करना था आपको। ये सुनकर वेदांत की आंखें छोटी हो गईं। उसने पूरे घर पर नजरें दौड़ाते हुए कहा, तो क्या तुम अपने कमरे में हो? अनाही ने एक नज़र पीछे खड़े रूहान की तरफ देखा जो उसके ऐसे जाने से थोड़ा उदास हो गया था। फिर उसने जल्दी से कहा, नहीं, मैं और रूहान डेट पर आए हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इतना बोलकर अनाही ने जल्दी से कॉल कट कर दिया। वहीं वेदांत की खुशी का तो ठिकाना नहीं था ये सुनकर कि उसका भाई अपनी बीवी के साथ डेट पर गया है। वो खुश होते हुए बोला, आई कांट बिलीव, एक बेहाती रूढ़ी लड़की और दूसरी तरफ एक बचकाना लड़का दोनों एक साथ डेट पर जा भी सकते हैं। मुझे तो लगा था उनकी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे को डांटने में ही बीत जाएगी, लेकिन बात आगे बढ़ रही है। बिहा जो अब तक अंदर जाकर फ्रेश भी होकर आ चुकी थी, उसने अपने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा, आपका यहाँ खड़े रहने का कब तक का इरादा है? आपको पता है मैं ऊपर रूम में जाकर कपड़े चेंज करके भी आ चुकी हूँ और आप अभी तक यहीं अपने फ़ोन को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, कहीं कोई दूसरी तो नहीं पसंद आ गई आपको? दिखाओ मुझे आप किसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वेदांत ने प्यारी सी स्माइल के साथ विहा को देखा जिसकी छोटी सी नाक गुस्से में लाल थी और वो बहुत क्यूट लग रही थी। वेदांत ने अगले ही पल झुकते हुए उसके गाल को चूमकर कहा, नहीं टोमेटो, मुझे कैसे दूसरी पसंद आ सकती है, मुझे तो मेरी टोमेटो पसंद है ना। चलो तो मैं बताता हूँ तुम्हें कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा था। माधवी जो किचन से बाहर आ रही थी, उसने उन दोनों को देखकर मुंह बिगाड़ते हुए कहा, बच्चों थोड़ी तो शर्म कर लो, तुम दोनों एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, अलग घर लेकर नहीं जहां तुम अपनी मनमर्जियां कर सको, थोड़ी शर्म लिहाज रखा करो। विहा ने जल्दी से कहा, ताई जी अपने आनंद भैया को हवा ने तो पैदा किया नहीं होगा, जरूर ताऊ जी और आपके बीच कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से आनंद भैया इस दुनिया में आए थे, और मेरा पति तो वैसे भी सिर्फ मेरे गाल पर किस कर रहा है, इसमें कौन सी शर्म है? और मैं तो कभी नहीं भूल सकती कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, आप पूरा दिन तो मुझे ताना मार मार कर याद दिलाती रहती हो। वेदांत को समझ नहीं आ रहा था इस छोटे से बम को वो कैसे शांत करे। उसने जल्दी से विहा को अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, टोमेटो अपनी जुबान पर काबू रखा करो, और फिर जबरदस्ती की स्माइल लिए माधवी की तरफ देखते हुए बोला, इसकी कोई गलती नहीं है, आपको इसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आप सीधा नाम लेकर बोला कीजिए कि वेदांत बेटा थोड़ी शर्म लिहाज कर लो, फिर इसे बुरा नहीं लगेगा। विहा ने झटपटा कर कहा, नहीं मुझे फिर भी बुरा लगेगा, आप मेरे पति हो। आखिर मेरे पति को कोई कैसे बेशर्म बोल सकता है, उसे सिर्फ मैं बेशर्म बोल सकती हूँ, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरे अलावा कोई अगर आपको बेशर्म बोलेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। माधवी दांत पीसते हुए उन दोनों की तरफ देख रही थी। माधवी ने फिर वेदांत के चेहरे को देखते हुए कहा, तुम अभी भी बेशर्म वाली ही हरकती कर रहे हो, तुम इसका हाथ पकड़कर भी ले जा सकते थे। वेदांत ने आंखें बड़ी करके कहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है ये क्या बकवास कर रही है? आपको लगता है ये मेरा हाथ पकड़ने से शांत हो जाएगी और मेरे साथ अच्छे बच्चों की तरह ऊपर चली जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। वेदांत बस उम्मीद कर रहा था कि विहा की सारी बातें माधवी को ना समझ आए, क्योंकि उन लोगों के बीच थोड़ी दूरी थी, लेकिन माधवी को सब सुनाई दे रहा था। उसने गुस्से में कहा, मैं इस घर की मुखिया हूँ, तुम्हें मेरे सामने अपनी जुबान पर लगाम लगाना होगा, तुम कैसे मेरे दांत तोड़ने की बात कर सकती हो? क्या अब इस घर में मेरी इज्जत ये रह गई है कि कोई भी आकर मुझे कुछ भी बोल देगा और मैं चुपचाप सुन लूंगी? वेदांत ने जल्दी से कहा, नहीं आप गलत समझ रही हैं, इसका वो मतलब नहीं था, इससे तो एक चींटी भी नहीं मार सकती है, किसी के दांत तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। वहीं विहा ने जल्दी से कहा, ताई जी आप ये क्यों नहीं बोलते कि आप आगे से ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिसकी वजह से मैं आपसे फिर से ये बकवास बाती बोलूं? अगर आप बकवास कम करेंगे तो सामने से बकवास ही सुनने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक नया जोड़ा अपना प्राइवेट मोमेंट्स एंजॉय कर रहा है तो आप इसे डिस्टर्ब ना करें, पर नहीं आपको बीच में घुसकर उन दोनों को ताने मारने हैं, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसे ताने नहीं सुनूंगी।
वेदांत अब तेज कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि उसे पता था वो जितनी देर यहाँ रहेगी विहा का टेप रिकॉर्डर बंद नहीं होने वाला है। अब वो बस उम्मीद कर रहा था कि माधवी कोई बखेड़ा ना खड़ा करे और इस बात को यहीं भूल जाए।